आमाल बाब पांच। हनन्याह नामी एक शख्स था। हनन्याह की एक बीवी थी जिसका नाम सफीरा था। उसने ज़मीन का कुछ हिस्सा फरोख्त कर दिया, लेकिन अपनी ज़मीन फरोख्त करने के बाद रकम का एक हिस्सा रसूलों को पेश किया और एक हिस्सा बीवी की मर्ज़ी से अपने लिए रख लिया। पतरस ने कहा,
हनन्याह, क्या शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि रूहुल कुद्दूस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ अपने लिए रख छोड़े? फरोख्त करने से पहले इस पर तुम्हारा हक था, और बाद उसके भी तुम रकम को अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते थे। फिर ये शैतानी ख्याल कैसे आया, दिल में किस तरह आया? तुमने इंसान से नहीं खुदा से झूठ कहा।
जब हनन्याह ने यह सुना तो वो गिरा और मर गया। कुछ नौजवानों ने आकर उसके जनाजे को लपेट कर दफन किया, और जिस किसी ने भी ये वाक़या सुना तो सुनकर खौफजदा हो गया। 3 घंटे के बाद उसकी बीवी सफीरा अंदर आई। उसको तमाम वाक़यात मालूम नहीं थे जो उसके शौहर के साथ पेश आए थे। पतरस ने उससे कहा,
तुम्हें कितनी रकम जमीन के फरोख्त करने पर मिली थी? क्या रकम इतनी ही थी जितनी की हनन्याह ने बताई थी?
सफीरा ने जवाब दिया,
हाँ, इतनी ही रकम मिली थी।
पतरस ने कहा,
तुम और तुम्हारे शोहर ने क्यों खुदावंद की रूह को जांचने का फैसला किया? सुनो, क्या तुम पैरों की आहट सुनती हो? वो आदमी जिसने तुम्हारे शोहर को दफनाया वो दरवाजे पर है, और वो तुम्हें भी ले जाएंगे।
दूसरी सुबह सफीरा उसके पैरों पर गिरी और मर गई। नौजवान ने अंदर आकर देखा तो वो मर चुकी थी। चुनांचे बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। तमाम अहले ईमान और वो लोग जिन्होंने ये वाक़या देखा और सुना, ये सुनकर खौफजदा हो गए। रसूलों ने बहुत से मौजज़े दिखाए और कई अजीब चीज़ें भी ज़ाहिर कीं। तमाम लोगों ने उन चीज़ों को देखा। तमाम रसूल एक साथ सुलेमान के बरामदा में जमा हुए। उन तमाम का एक ही मकसद था, लेकिन उन लोगों में से किसी को जुर्रात ना हुई कि उनमें जा मिले, और तमाम लोग मसीह के रसूलों के मुतालिक अच्छे ख्यालात बयान करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिनमें मर्द और औरतें भी हैं, खुदावंद पर ईमान लाए। बस लोग अपने बीमारों को सड़कों पर ले आए, क्योंकि वो सुन चुके थे कि पतरस वहाँ आ रहा है। इसलिए उन्होंने अपने बीमार लोगों को चारपाइयों और पलंगों पर लाए, इस ख्याल से कि कम अज़ कम उसका साया ही पड़ने से वो लोग तंदुरुस्त हो जाएंगे। जो लोग यरूशलम के एतराफ गांव से आकर जमा थे और अपने साथ बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुए लोगों को लाए थे, और ये तमाम लोग शिफा याब हो गए। आला काहिन और उसके दोस्तों का गिरोह, जिनका ताल्लुक सदूकियों से था, उनसे हसद करने लगे थे। उन्होंने मसीह के रसूलों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया, लेकिन रात के वक्त खुदावंद के फरिश्ते ने जेल के दरवाजे को खोला और उन्हें बाहर लाकर कहा,
जाओ और हैकल में खड़े होकर तमाम लोगों को उस यीशु की नई जिंदगी के मुतालिक बताओ।
जब रसूलों ने यह सुना तो उन्होंने हुक्म की तामील की और हैकल को गए। ये पहली सुबह का वक्त था। रसूलों ने तालीम देनी शुरू की। आला काहिन और उनके दोस्तों के गिरोह ने यहूदी कायदीन की और अहम यहूदी बुजुर्गों की मजलिस तलब की। उन्होंने चंद लोगों को जेल भेजा ताकि वो मसीह के रसूलों को लाएं। वो लोग जेल गए, लेकिन उन्होंने वहां रसूलों को नहीं पाया, और वो वापस आए, आकर यहूदी कायदीन से इस वाक़या की इत्तला दी। उन्होंने कहा,
जेल बंद और उसमें ताला लगा हुआ था, और निगराकार सिपाही भी दरवाजों पर थे, लेकिन जब हमने जेल का दरवाजा खोला तो हमने देखा कि वहाँ कोई न था।
हैकल के कप्तान और दूसरे काहिनों के रहनुमा ने ये सुना तो हैरान हुए और सोचने लगे कि
उसका अंजाम क्या होगा।
तब दूसरा शख्स आया और उनसे कहा,
सुनो, जिन लोगों को तुमने जेल में रखा था वो हैकल के आंगन में खड़े हैं और लोगों को तालीम दे रहे हैं।
तब कप्तान और पहरेदार हैकल गए और रसूलों को ले आए, लेकिन उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो लोगों से डरे हुए थे, इस ख्याल से कि कहीं लोग गुस्से में आकर उन्हें संसार न कर दें। सिपाही रसूलों को मजलिस में ले आए और उन्हें यहूदी कायदीन के सामने खड़ा कर दिया। आला काहिन ने रसूलों से सवाल किया,
हमने तुमसे कहा था कि उस आदमी के मुतालिक से तालीम ना देना, लेकिन तुमने सारे यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी। इस तरह तुम इस शख्स की मौत की जिम्मेदारी हमारे गर्दन पर रखना चाहते हो?
पतरस और दूसरे रसूलों ने जवाब दिया,
हमें खुदा का हुक्म मानना है, तुम्हारा नहीं। तुमने यीशु को सलीब पर लटका कर मार डाला, लेकिन खुदा जो हमारे आबाओ अजदाद का खुदा है, यीशु को मौत से उठा लिया है। यीशु को खुदा ने दाहिनी जानिब से बुलंद किया और उसको खुदावंद और नजात दहिंदा बनाया। यह इसलिए किया ताकि तमाम यहूदी अपने दिलों को और जिंदगियों को बदलें, तब खुदावंद उनके गुनाहों को माफ़ कर सकता है। हमने ये सब कुछ देखा, इसलिए हम कहते हैं ये सब कुछ सच है। रूहुल कुद्दूस भी और सब चीज़ें सच हैं। खुदा ने उन सब लोगों को जो उसकी इताअत करते हैं रूह दी है।
जब यहूदी कायदीन ने ये सारी बातें सुनी तो गुस्से में आ गए और रसूलों को कत्ल करना चाहा। एक फरीसी जिसका नाम गैमलीएल, जो शरीयत का उस्ताद था, सब लोग उसकी इज्जत करते थे, उसने कहा कि मसीह के रसूलों को चंद मिनट के लिए अजलास से बाहर भेज दिया जाए, और फिर उनसे कहा,
ऐ बनी इसराइलियों, खबरदार रहो, तुम इन लोगों के साथ जो करना चाहते हो होशियारी से करो। वो जब थियोदास जाहिर हुआ था, उसने कहा था कि मैं एक अहम शख्स हूँ, तो तकरीबन 400 आदमी उसके साथ हो गए, लेकिन वो मारा गया और उसके लोग सब परागंदा हो गए और तमाम चीज़ें बगैर फ़ायदे के ख़त्म हो गईं। उसके बाद एक आदमी यहूदा गलील से मरदूम शुमारी के वक्त आया था, उसने भी कुछ लोगों को अपनी तरफ रागिब कर लिया था, वो भी मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे सब परागंदा हो गए और भाग गए। मैं तुमसे कहता हूँ, उन आदमियों से दूर रहो, उन्हें तना छोड़ दो। अगर ये लोगों का मंसूबा है तो ये नाकाम होगा, लेकिन अगर ये खुदा की तरफ से है तो तुम इन्हें रोक नहीं सकोगे, और तुम भी शायद खुदा से लड़ने वालों में शुमार किए जाओगे।
यहूदी कायदीन ने गैमलीएल की बात से इत्तेफाक कर लिया। उन्होंने रसूलों को दोबारा बुलाया और उनको पिटवाया और हुक्म देकर छोड़ दिया। वो दोबारा यीशु के मुतालिक कुछ न कहा। तब उन्होंने रसूलों को आज़ाद किया। मसीह के रसूलों ने वहाँ मजलिस को छोड़ा। वो खुश हुए क्योंकि मसीह के नाम की खातिर बेइज्जत ज़रूर ठहरे, और हर रोज़ वो मुसलसल लोगों को तालीम देते रहे घरों में और हैकल में, और खुशखबरी कहते थे कि यीशु ही मसीह है।